ആചാര്യ ഗുരുവർ വിദ്യാസാഗർ മുനിമഹാരാജ് രത്നകരണ്ഡ ഷാവകാചാർ ആചാര്യ സമന്തഭദ്ര സ്വാമി കാ അപ്പൻ പഠ രേ ജീവൻ മേ അപ്പനെ ആത്മാ കെ വികാസ് കെ ലിയേ യദി ഹം കോഈ മാർഗ് അപ്നാതേ ഹൈ തോ ഉസ് മാർഗ് കി ശുരുവാത് മേ ആചാര്യോ നെ കഹാ ഹൈ कि हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। श्रद्धा सच्ची होने पर ही हमारा उस मार्ग के प्रति ज्ञान और उस मार्ग पर चलने के लिए किया गया प्रयास सफल होता है। अपन देखें कि यदि किसी डॉक्टर के पास से या वैद्य के पास से औषधि लेकर के आए हैं और उस वैद्य पे विश्वास नहीं है, औषधि पे विश्वास नहीं है, तो उस औषधि के बारे में कितना भी आपका परफेक्ट नॉलेज क्यों ना हो और आप उस औषधि का सेवन भी क्यों ना करें, पर वो औषधि आपको संतोष तो नहीं दे पाती। खा तो ली है लेकिन इससे थोड़ी ठीक होएगा, ऐसा मन में आदि विचार है। इसी तरह यदि हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली और अपने आचरण में भी उसको लाने की कोशिश करी पर हमारी श्रद्धा नहीं है यदि उन सब चीजों पर, तो मानिएगा कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं हुई, हमारे विकास का कोई क्रम शुरू ही नहीं। इसलिए सबसे पहले सच्ची श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा भी दो तरह की हो सकती है, झूठी श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा। क्यों जब भी हम कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धा, अकेले दर्शन से अकेले श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। सम्यक दर्शन कहा है, सम्यक शब्द लगाने का आशय यही है, समीचीन होना चाहिए, जैसी होनी चाहिए वैसी श्रद्धा। श्रद्धा तो हमारी सांसारिक भी हो सकती है, हम कई चीजों पर विश्वास इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारे पांचों इंद्रियों के सुख हमको मिल सके, लेकिन सच्ची श्रद्धा वो है जो उन पांचों इंद्रियों के सुख से परे कोई अतीन्द्रिय सुख भी है और वो अतीन्द्रिय सुख मेरे अपने आत्मा का स्वभाव है। इस तरह की जब प्रतीति होती है, इस तरह की जब रुचि हमारे भीतर जागृत होती है, तब वो श्रद्धा हमारे भीतर आती है। ऐसी श्रद्धा जो पारमार्थिक श्रद्धा है वही सच्ची श्रद्धा है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति भी हम स्वार्थवश श्रद्धा कर सकते हैं, लेकिन उस श्रद्धा की बात यह नहीं है। हमारा स्वार्थ सत्ता होगा तो हम देव के पास चले जाते हैं, वो सच्चे देव हैं, ये बाजुबी है। सच्चे देव के पास भी यदि हम स्वार्थ बस जाते हैं, गुरु के पास भी गुरु का स्वरूप जैसा कहा है वैसा हमने देख लिया कि ये स्वरूप गुरु का है, और फिर वो तो सही है, देव तो सही है, वितरागी हितोपदेशी है और सर्वज्ञ है, गुरु भी विषयों की आशा जिनके नहीं है और आनंद परिग्रह का त्याग करके ज्ञान धाम में लीन है वो भी हमें मिल गए हैं, शास्त्र भी जो वितरागता का उपदेश देता है, तत्व स्वरूप का प्ररूपण करता है, अहिंसा और सर्व कल्याण की बात जिसमें निहित है, ऐसा शास्त्र मिल जाने के बाद भी यदि हमारा इंटेंशन ठीक नहीं है, यदि हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है उसके प्रति, तो मानिएगा कि वो श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं कहलाएगी। ये बारीक सी भूल रह जाती है, श्रद्धा होने के बाद भी उसको परफेक्टनेस देना ये अब हमारा काम है। अब श्रद्धा तो हमारी हो गई, भूमिका तो बन गई है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप भी समझ में आ गया है और जो उनके द्वारा कहे गए सात तत्व हैं उन तत्वार्थ पर भी हमारा श्रद्धान है, जैसे भगवान ने कहे हैं वैसा ही हमारा श्रद्धान भी हो गया है, पर देखना पड़ेगा कि भीतर इंटेंशन क्या है। आप क्यों सात तत्वों को जानना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों सच्चे देवगुरु शास्त्र में रुचि है इसलिए ये सब चीजें आपने स्वीकार करी हैं, या कि आपकी कहीं और रुचि है, आपकी संसार में रुचि है। इनसे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने संसार की रुचि को पुष्ट करना चाहते, ये हमें बहुत गौर से अपने भीतर देखना पड़ेगा। इसमें दूसरे का हाथ नहीं चलेगा, इसमें तो खुद अपने को अपने आप अपने भीतर झांक करके देखना पड़ेगा कि आखिर मेरी श्रद्धा के पीछे कारण क्या है, क्या प्रेरणा है उसके पीछे, क्यों मैं इस तरफ बढ़ रहा हूं। ये हम अपनी श्रद्धा को सच्चे बनाने की प्रक्रिया है और तभी हमारे जीवन का उत्थान संभव है। एक बहुत बढ़िया शिष्य था किसी गुरु का, उसको अपने गुरु पर भारी श्रद्धा थी और इतनी श्रद्धा थी कि एक बार लोगों ने कहा कि अगर तेरी श्रद्धा सच्ची है तो तू पानी पे चल के बता। श्रद्धा की कैसी कैसी परीक्षा लोग लेते हैं, श्रद्धा के द्वारा जो चीजें बाएं हाथ का खेल होती हैं बेबी लोगों को चकित कर देती हैं, बेबी अचंभे में डाल देती है। और व्यक्ति ये नहीं देखता है कि श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ है, ये देखता है कि उसका चमत्कार कैसा है। तब हम नमस्कार करेंगे। अब तो हमारी श्रद्धा भी ऐसी हो गई है कि जहां हमने श्रद्धा की है वहां कुछ चमत्कार दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं तो फिर क्या मतलब है। तो लोग उससे कहा करते कि तुम पानी पर चल के दिखाओ, तो वो कहते हैं कि अगर श्रद्धा की बात है तो मैं तो अभी चल के बता देता हूं, लेकिन यदि तुम ये कहो कि पानी पर चल के बताना कोई बहुत बड़ी चीज है इसलिए तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो नहीं बताऊंगा। तो वो कहते नहीं नहीं, हम तो तुम हमारा तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है, हम तो अपनी श्रद्धा मजबूत करने के लिए तुमसे कह रहे हैं कि अगर पानी पे चल के दिखाओ, देखें तुम्हारी श्रद्धा है कि। और वो नदी में ऐसे चला जाता जैसे कि रास्ते पे चल रहा है, बड़े सहज रूप से चले जाता। लोगों ने एक बार उसको और जो दूसरे शिष्य थे जो ईर्ष्या रखते थे उससे, उन्होंने कहा कि ये एक आध बार इस तरह किया जाए कि ये समाप्त ही हो जाए। ऐसा भी कई लोगों का एटीट्यूड हो जाता है, देखना श्रद्धालु कोई व्यक्ति बहुत चुभने लगता है, कोई अगर थोड़ा सा गुणों में अपना विकास करने लगे तो अपन लोगों के साथ बड़ी मुश्किल है, हमें फिर अपनी कमजोरी अखड़ने लगती है। अगर पूरी क्लास में एक आध पास हो जाए और सबरे फेल हो गए तो उन फेल वालों को थोड़ी तकलीफ होती है उसके पास होने वाले से, और अगर सभी फेल है कौन पूछता है, कोई तकलीफ नहीं होती कि सभी फेल है। तो बाकी लोगों को बहुत मुश्किल होती थी कि इसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ है, इसका बड़ा नाम है। तो उन्होंने एक दिन कहा कि तुम अगर पहाड़ के नीचे गिर के बताओ तो हम जानेंगे तुम्हारी श्रद्धा मजबूत है। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो लोगों ने उसको धक्का दे दिया, वो तो अपने आप पूरा नहीं, लोगों ने धक्का दे दिया उसको, धक्का दे दिया, उसने अपने गुरु का स्मरण किया, जाकर के देखा तो नीचे बिल्कुल ध्यान में बैठा हुआ था वो, तो ऐसे जैसे कि किसी ने ऊपर से उठा करके उसको नीचे बिठा दिया हो, 500 फीट नीचे गिरा हो, फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। अब तो लोगों को और मुश्किल पड़ी। एक दिन क्या हुआ कि आश्रम में आग लगी, तो लोगों ने कहा कि एक और मौका है, इसको भेज दो भीतर कि सामान बचा के लाओ, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो तुम नहीं जलोगे और उसी में बैठे रहना। उसने कहा कि इसमें कौन सी बात है, अगर गुरु जी का नाम लेते हो, गुरु जी की श्रद्धा की बात करते हो तो अभी चले जाता हूं। वो चला गया भीतर और जाकर के ध्यान में बैठ गया, सारी चीजें जल गई लेकिन वो ज्यों का त्यों बचा रहा। लोगों ने कहा कि अब तो अद्भुत बात है, और ये सारी बातें जो है उसके गुरुजी तक पहुंच गई। गुरुजी किसी दूसरी जगह रहा करते थे दूर, गुरुजी को भी एक बार मुश्किल पड़ी। गुरुजी भागे भागे आए और अपने उस शिष्य से कहा कि क्या ये बात सही है, तू पानी पर चल गया मेरा नाम लेकर के। उन्होंने कहा हां, तेरे को ऊपर से पहाड़ के नीचे से गिरा दिया, तेरा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा हां, और अभी भी जो आग लगी थी उसमें भी तू नहीं जला। नहीं, जल कैसे सकता हूं, आप मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मामला बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया। गुरु जी को थोड़ा सा अहंकार आ गया कि देखा मेरा कितना प्रभाव है, मेरी श्रद्धा की वजह से जो है ये सब कुछ कर लेता है। इतना अहंकार आते ही साथ, और गुरु जी ने कहा कि जब मेरा नाम लेकर के तुम कर सकते हो तो मैं तो आसानी से कर सकता हूं, लगाओ आग और मैं उसमें जा करना थी। जलने में देर थोड़ी लगती है, जल तो पहले ही गए, अहंकार जहां आया वहीं पर जल गए, फिर बाद में तो आग बात तो बाद में जलाती है। श्रद्धा और आत्मविश्वास जहां टूटता है वहां पर तो फिर तो संसार ही है और कुछ शेष नहीं रहता है। ध्यान हमें रखना है कि अब जबकि हमारे पास सच्ची श्रद्धा है, ये श्रद्धा भी हमारे भीतर कहीं अहंकार पैदा ना कर दे कि आई एम फर्स्ट इन द डिवोशन, मैं समर्पण प्रथम व्यक्ति हूं, मैं सबसे अधिक श्रद्धालु हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, इस तरह का कहीं भीतर भीतर अहंकार ना आ जाए। जैसे कि ज्ञान का अहंकार आ सकता है, जैसे कि अपनी तपस्या का अहंकार आ सकता है, ऐसे ही अपने निर्मल दृष्टि का भी अहंकार मत कर लेना। ये बड़ी बारीक सी स्थिति है। हालांकि जिसकी दृष्टि निर्मल होगी, जिसको सम्यक दर्शन हो गया होगा, वो इस तरह का अहंकार तो नहीं करेगा। पर भैया, कर्मों का क्या भरोसा, कब कौन सा कर्म उदय में आए और हमारे बांधे कर्म हमें ही मुश्किल में डाल दें, इसलिए बहुत आवश्यक है कि ना हम दूसरे को कहेंगे कि ये मिथ्या दृष्टि है, ना हम ढिंढोरा पीटने जाएंगे कि मैं सम्यक दृष्टि हूं बाकी कोई नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि वेरी रेयर दो या तीन होंगे। तो बड़ा मजा है, दो लोग बात कर रहे थे कि दो या तीन होंगे, तो एक तो तुम और एक हम, एक को और तीसरा, हटा झगड़ा खत्म। ऐसा अगर हमने सोच लिया कि दो या तीन नहीं, दो या तीन के मायने की हजारों में दो या तीन की संख्या होगी, इस पूरे ढाई दीप में दो या तीन नहीं, उनकी संख्या तो दिखी हुई है। तीन कम नौ करोड़ जो मुनि महाराज जी हैं, उनकी संख्या जैसे अकेले छठे सातवें गण स्थान की नहीं, पूरे तेरहवें गण स्थान तक की है, इसी मुझे याद नहीं आती कितनी है, करोड़ों में संख्या है उसकी, छोटी मोटी संख्या नहीं। पर फिर भी हम कभी भी ये विचार न करें और हम सम्यक दृष्टि हैं। मिथ्या दृष्टि कहने के पीछे जो अहंकार छिपा हुआ है वो सावधानी रखने वाली चीज है, किसी भी क्षण टूट सकता है। अंतर्मूर्त जो उपसम सम्यक दर्शन है, उपसम सम्यक दर्शन तो अंतर्मूर्त के लिए होता है, सर्वोपसम सम्यक दर्शन भी होकर के और दिन भर में कई दफे छूट भी सकता है। अगर थोड़े से भी हम चूक गए हमारी श्रद्धा में, बट्टा लगने में तो देर नहीं लगती, पर श्रद्धा का टूटने में भी देर नहीं लगती। और मुश्किल कितनी पड़ती है श्रद्धा पूरे जीवन में बनाने में, ये अपन इतने दिन से समझ रहे हैं कि कितना मुश्किल काम है। और मुश्किल सिर्फ यह है कि हमारे अपने अहंकार की ही मुश्किल है, हम झुकना नहीं चाहते। अकेले ज्ञान प्राप्त करने से भैया, और अकेले तपस्या कर लेने से नहीं होता, जब तक ज्ञान के साथ विनय और तपस्या के साथ श्रद्धा नहीं है, तब तक अपन पढ़ चुके हैं कि वो ज्ञान और वो तपस्या सब बिना श्रद्धा के हमें ज्यादा उपयोगी नहीं है। वो थोड़ा सा पुण्य का अर्जन तो कराती है, कर्मों की निजरा नहीं करा पाती है। इसलिए हमें तो पूरी प्रक्रिया कर्मों की निजरा के लिए और अपने आत्मविकास के लिए करनी है। आत्मविकास तो कर्मों की निजरा से ही संभव है, और एक सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निजरा होना शुरू होती मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। और अगर वो अनुभव मिली तो उसकी बात ही क्या है, क्योंकि सम्यक दर्शन के काल में असंख्यात गुणी निजरा होती है सिर्फ, लेकिन अगर कोई उसके साथ अनुभव ले लोगे तो पूरे जीवन पर्यंत कर्मों की निजरा असंख्यात गुणी होती रहती। और फिर महाबुद्धि की तो बात ही क्या करना है। मोक्षमा प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा कि एक सम्यक दृष्टि सामायिक में लीन होकर के अपने आत्मा का, शुद्ध आत्मा का चिंतन करे, उसमें जितनी कर्मों की निद्रा होती है उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निद्रा एक देशभक्ति श्रावक भोजन करते समय कर लेता है। और जितने श्रावक एक भोजन करते हुए, जितने एक सामायिक में लीन श्रावक अनुभूति अपने आत्म चिंतन के समय जितनी निद्रा करता है, एक महाव्रती साधु भोजन करते समय उससे असंख्यात गुणी निद्रा कर लेता है। फिर वो साधु अगर ध्यान होती है और अपने जीवन में जैसी अपनी दृष्टि निर्मल होती है, पवित्र होती है, हमें व्रत नियम संयम के लिए भाव तो बनाना ही चाहिए। भाव बनाने में थोड़ी पैसा लगता है कि मुझे वो चीज और मिले, मुझे ये निर्मल दृष्टि मिल रही है, ये निर्मल दृष्टि मुझे कह रही है कि अब तुम अपने जीवन के कल्याण के लिए देरी मत करो, अब तो और शीघ्रता करो, अनुव्रत महाव्रत जो जैसी चीज जिससे शक्ति हो गई यथाशक्ति लेकर के जो है और अपने जीवन का कल्याण करो। ये सम्यक दर्शन की महिमा। आपने कभी सुना होगा कि सम्यक दर्शन 10 प्रकार का भी होता है। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन के 10 भेद कहे। सम्यक दर्शन तो भैया एक ही है, अगर देखा जावे तो कर्मों के क्षयोपशम और क्षयोपशम से होने वाली जो आत्मा की विशुद्धि है वो सम्यक दर्शन है, और उसके माध्यम अलग अलग है। कोई कोई सम्यक दर्शन दूसरे के उपदेश से सुन करके प्राप्त होता है तो उसको अपराधी समझ कह देते हैं, और कोई जो है स्वतः ही हो जाता है कर्मों के क्षय उपशम और क्षय उपशम से, कोई बाह्य कारण नजर नहीं आता तो कर्म के पुण्य सर्व सम्यक दर्शन। ऐसे दो भेद तो कर ही देते हैं, पर 10 प्रकार के सम्यक दर्शन बता करके हमें बहुत अच्छा इशारा किया। मैं सोचता हूं कि आज उन 10 सम्यक दर्शन को भी अपन समझ लें कि क्या पता किसको किस तरह से सम्यक दर्शन हो जावे। अपन ये नहीं माने कि सम्यक दर्शन तो जिसको कालमुक्ति आ जाएगी उसी को होगा। कालमुक्ति का तो कोई प्रत्यार नहीं है, कोई कमिटमेंट तो हमारा है नहीं किसी से कि भैया उस समय काल से मेरे को कमिटमेंट हुआ हो कि जब वो आएगा तब फिर मैं हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हमें तो प्रयास करते रहना पड़ेगा। कहते हैं शास्त्र श्रवण किए बिना केवल बीत रात भगवान की कही वाणी पर श्रद्धा हो जाने से जो सम्यक दर्शन होता है वो आज्ञा सम्यक दर्शन कहलाता है। शास्त्र का श्रवण तो करने का मौका ही नहीं मिला, पर भगवान वीतरागी हैं, सो सच्चे हैं, उनके द्वारा कहा गया तत्व का उपदेश सच्चा है। जो जितने तत्व तत्व नहीं वालों के साथ होते हैं कि कितने होते, जितने भगवान ने कहे हैं सो ही सच्चे हैं, हो गया काम। श्रद्धा जो है निर्मल करने में परिणामों को सहायक हो गई। आज्ञा सम्यक दर्शन ऐसे हो जाता है, उसका नाम आज्ञा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो वही है, पर क्योंकि आज्ञा मान करके हुआ है इसलिए उसका नाम आज्ञा सम्यक दर्शन दे दिया। फिर कहते मार्ग सम्यक दर्शन। मार्ग सम्यक दर्शन में भी ग्रंथ के श्रवण किए बिना स्वतः ही भीतर दर्शन मुनि कर्म का उपशम होने से जो मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उसका नाम मार्ग सम्यक दर्शन है। हमें मार्ग सच्चा मालूम पड़ने लगा कि है तो सच्चा यही। कोई गाय बाहर खड़ी हो, घास चरती हो, और उसको अगर भगवान की प्रतिमा निकलती दिखाई पड़ जाए, विमान जी की यात्रा दिख निकल रही है, मुनि महाराज जी निकल रहे हैं, और वो गिर मुद्रा मुनि महाराज जी की छोड़ो, वो कैसे ही होगा, अपन को इससे कोई मतलब नहीं। अच्छे हैं बुरे हैं अपन को इससे मतलब नहीं, अपने को तो इससे मतलब कि वो जो मुद्रा है वो तो जीवन भगवान की मुद्रा है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वो जिन मुद्रा है उस जिन मुद्रा के दर्शन करने मात्र से और उसको सम्यक दर्शन हो सकता है कि मार्ग तो यही है और सच्चा है। ऐसा यदि उसके भीतर भावभासना हो गई तो कहते हैं उसको तो मार्ग सम्यक दर्शन हो गया। मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा कर्मों के उपशम होने से बिना किसी धर्म श्रवण के जो हो जाती है। फिर कहते उपदेश सम्यक दर्शन। उपदेश सम्यक दर्शन तो आज बहुत मुश्किल सा हो गया, क्योंकि कह रहे हैं सनातन पुरुषों के पुराण और चरित्र ग्रंथों के उपदेश से जो तत्व श्रद्धान होता है उसे उपदेश सम्यक दर्शन कहते हैं। पर आज तो पुराण और चरित्र पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया। एक समय हुआ करता था जब सोने से पहले अपने को तो भैया याद है कि अपनी मां बचपन में सुनाया करती थी कि जब तक नहीं सोते थे हम जब तक की सुनाएगी नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद सो रहे हैं तो तुम सुनाओ, पद्म पुराण सुनाओ, महापुराण सुनाओ, आदि पुराण जिसको कहते हैं, या कि चरित्र सुनाओ, सुर सुंदरी का चरित्र सुनाओ, मैना सुंदरी का सुनाओ, अंजना का सुनाओ, सुनाओ। और वो सुनाया करते थे। और अब तो बेटे को वक्त ही नहीं है इतना बड़ा, उसका बड़ी कभी क्लास में पढ़ने लगा, बहुत स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ता है वो, कोई आम बात थोड़ी, ऐसे थोड़ी हो सकता, ये छोटी मोटी चीजों से उसको क्या, वो तो बहुत स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ता है जिसकी फीस भी जो महीने वहां में कर 2-4-5 हजार रुपये फीस ही बढ़ने पड़ती है, तो कौन किताब उठाए होगी जो उसको इतना बेकार की बात पढ़ाएगी, उसको पुरान पुरान की सब आउट ऑफ डेट चीजें होगी, उसको तो एबीसीडी बनानी है और उसको बड़ा बनाना है, आदमी बनाना है। तो ऐसा उपदेश सम्यक दर्शन तो आज मुश्किल सा हो गया, पर फिर भी मुझे आशा है कि ऐसी मां भी होती होंगी जो कि बच्चे को बिठा करके समझाती होंगी कि महाशाला का पुरुष कितने हुए तो मालूम, 63 हुए हैं, 24 तीर्थंकरों के यहां नाम याद कर लो भैया, और दुनिया भर के नाम भूल जाओ लेकिन आखिरी समय महावीर स्वामी का नाम ले लोगे तो भी तुम्हारा पार हो जाए। 1008 नाम तो छोड़ो कौन पड़ता है शेष नाम, पर इनका चरित्र मालूम है महावीर स्वामी का, 5 नाम क्यों रखे गए थे इनके, इनको अतिवीर क्यों कहते हैं, इनको महावीर क्यों कहते हैं, वर्धमान क्यों कहते हैं, कभी बैठ करके मैंने प्रेम से सिखाया होगा, शायद ऐसा उपदेश दिया हो और उसको सम्यक दर्शन हो जाए। चरित्र पढ़ते समय सम्यक दर्शन हो जाए कि अद्भुत है, शैनिक का भी चरित्र अद्भुत है कि घोर मिथ्या दृष्टि और मुनि महाराज जी पर उपसर्ग कर दिया और जब भीतर से शब्द आई तो ऐसा कि छाया एक सम्यक दर्शन और तीर्थंकर प्रकृति बांध दी और आधा में तीर्थंकर की हैसियत से पैदा होने वाला वही चीज अद्भुत परिणामों की विचित्रता। पुराण पढ़ते पढ़ते जो है और किसी को सम्यक दर्शन हो जाए वो तो हो सकता है, कथा कहानी है, किस्सा है और कुछ नहीं, दूसरे का किस्सा है और उसको हमने पढ़ करके और अपने भीतर अपनी श्रद्धा को निर्मल कर दिया। दूसरा तो मीडिया बनता है, श्रद्धा तो हमारे भीतर, निर्मल तो हमारे भीतर आनी, हम किसको मीडिया बनाएंगे ये नहीं कहा जा सकता। तो कहते हैं ये शनाता पुरुषों के पुराण और चरित्र चित्रण भी माध्यम बन सकते हैं सम्यक दर्शन में, इसलिए इनको ऐसा नहीं मानना, आलमीरी नहीं बना मान लेना क्या इसमें क्या देखा किस्सा कहानी है, किसी दूसरे का है, अपने को क्या करना है। राग का वर्णन है, कई बार प्रथमाने योग की बात जब जब भी आती है तब तब ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें तो राग का वर्णन है, इसमें तो लड़ाई और सब प्रकार की राज कथा भी उसमें मालूम पड़ती, लेकिन कभी पढ़ के देखो कि सारा कुछ वही बढ़ाने के बाद भी जब छोड़ा तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा, अगर इधर तो जरा सी चीज मिल जाए तो उसी से चिपके रहने का मन होता है, छोड़ी नहीं जाती, उधर पूरा चक्रवर्ती का वैभव और एक तरफ छोड़ करके पीछे मुड़के भी नहीं देखा, और केवल ज्ञान लेकर के उठे बाहुबली, एक साल तक भोजन के लिए भी नहीं उठे, आहार वार के भी नहीं, केवल ज्ञान देकर उठेंगे अब ऐसी तपस्या, और जब तक संसार के जो भैया से गौरव तैयार आते कि हमारे राज पोदमपुर को धर्मा दे के गए थे हमारे पिताजी, और जब बैठा गया तो सारा कुछ छोड़ दिया। ये पढ़कर के एक पढ़कर के सम्यक दर्शन हो सकता है, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, किसको किस तरह होगा अपन नहीं जानते, अपने को तो सिर्फ ये है होना चाहिए, अब किस तरह से होगा भगवान जाने, अपने प्रधान जैसे होंगे वैसा कोई माध्यम बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा, योग्यता तो अपने उपादान की है। सूत्र सम्यक दर्शन होता है, कहते हैं मुनियों के आचरण के सूत्र आचारांग इत्यादि मूल आचार पढ़ करके सुन करके भी किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, अरे ऐसी चर्या होती है, ऐसा मुनियों का आचरण होता है और सच्चा तो यही है, ऐसा भीतर में अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो लीजिएगा सम्यक दर्शन हो गया, सुन रहे थे मुनियों का आचरण और अपने लिए सम्यक दर्शन हो गया, माध्यम बन गया। फिर कहते बीज सम्यक दर्शन, जीवादी पदार्थों का स्वरूप बीज रूप में जरा सा हिंट कर दी, जैसे बीज कहलाता है, अकेला किसी ने कहा नमः तो उन्होंने शुरू कर दिया पूरा रत्न शाप का 150 श्लोक उनके भीतर समा गए बीज रूप से, नमः तो नमः श्री वर्धमान आय निर्भूत वरिलात्मने, और आखिरी तक का पद जो है 150 श्लोकों का रत्न शाप का चार है वो उनके भीतर फीड हो गया, जैसे कि बीज में इतना सा बीज है खसखस के दाने के बराबर, उसके भीतर पूरा वटवृक्ष छिपा हुआ है, बोलो उसको तो उसमें से पूरा पेड़ निकलता है, वो उसके भीतर था ना इसलिए तो निकला उसमें से बीज, बीज में पूरी ताकत है उस वृक्ष को पैदा करने की। इसी तरह से एक बड़ा सा पद जीवादी पदार्थों को जानने का पद जिसने एक सुन लिया कि जीव, और उसके लिए जो है बोध हो गया, उसके लिए श्रद्धा जम गई, संक्षेप सम्यक दर्शन भी होता है, जीवादी सात तत्वों के नाम सुने और उनका स्वरूप सुना नहीं सुना और सुनने से पहले ही जो है जीवादी सात तत्वों का श्रद्धान हो गया, क्योंकि संक्षेप सम्यक दर्शन कहलाता, विस्तार सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होता, सात तत्वों का खूब विस्तार से भी वर्णन सुन लिया, कहते हैं कि 12 अंगों का जिसको ज्ञान प्राप्त कर लिया तब जाकर के सम्यक दर्शन होता है, 12 अंग के से मतलब यह है कि 11 अंग और 9 पूर्व तत्व मिथ्या दृष्टि भी रहा। सम्यक दर्शन वहां जाकर के, फिर कहते अर्थ सम्यक दर्शन, अंग बाह्य को नहीं पढ़ा। अंग पुरुष के अंग बाह्य दो होते हैं अपने शुद्ध ज्ञान के भेद। अंग बाह्य वो कहलाता है जो कि अंग ज्ञान के आधार पर परंपरा से आचारी लोग हमें देते हैं करा करके। तो आज अपने पास अंग बाह्य ही है ये सारा ज्ञान, अंग ज्ञान तो विलुप्त हो गया। अंग ज्ञान के धारी तो एक अंश के धर्मसेन स्वामी तक थे, कुछ दिन भूतबली को उनका भी ज्ञान थोड़ा सा मिला, वो सब जो है अब अपने पास अंग बाह्य है, द्वादश अंग तो है ही नहीं। कहते अंग बाह्य भी जिसने नहीं सुना उसको पढ़े बिना किसी भी पदार्थ के निमित्त से, कोई भी जीवादि सात तत्व कहे हैं न पदार्थ कहे, उनमें किसी भी के भी माध्यम से, किसी के भी स्वरूप के माध्यम से और सम्यक दर्शन सुनते सुनते जो है सम्यक दर्शन हो गया, ये अर्थ सम्यक दर्शन कहलाता। और अवगाह सम्यक दर्शन तो वो है जब द्वादश अंग में अवगाहन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अंग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अंग वायु प्राप्त कर रहे हैं उस समय। अरे अद्भुत है ऐसा सर्वज्ञता ज्ञान, सर्वज्ञ ही सच्चे हैं, वही वितरागी, वही रतोपदेशी, और ऐसा भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो गया उसको अवगाह सम्यक दर्शन कहते हैं। परमावगाह सम्यक दर्शन वो है केवल ज्ञान के द्वारा देखे गए समस्त पदार्थों के विषय में जो रुचि उत्पन्न हो जाती है, श्रुत केंद्री महाराज का ज्ञान है और उनके दर्शन करने मात्र से परमावगाह। परमावगाह ऐसा है मानिएगा जैसे कि अपन ने किसी चीज पर श्रद्धा करी किसी से सुन करके, और जब वो चीज सामने आ गई तो कैसी श्रद्धा होती है, कह रहे वाह यही तो भाता है, ऐसे तो हम देख रहे हैं अपने केवल ज्ञान के द्वारा देख रहे हैं, वो कहते परमावगाह सम्यक दर्शन। कितने माध्यम हो सकते हैं सम्यक दर्शन के, इनमें से किसी भी माध्यम से और हम अपनी श्रद्धा को निर्मल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होनी चाहिए अपनी श्रद्धा को निर्मल करने की, और जिसकी श्रद्धा निर्मल हो जाती उसको वास्तविकता का बोध हो जाता है, और वास्तविकता का बोध एक बार हो जाए तो फिर उसका व्यवहार बदल जाता है। हम लोगों के साथ मजा यह है कि वास्तविकता का बोध हुए बिना भी हम अपना व्यवहार बदल देते हैं, और ऐसा व्यवहार बदल जाने से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, व्यक्ति बहुत मुश्किल में पड़ता है। दूसरा वाला कि भैया व्यवहार से तो बहुत अच्छे मालूम पड़ते हैं लेकिन इनकी दृष्टि जो है वो कुछ समझ में नहीं आती, इनका एटीट्यूड समझ में नहीं आता। तो वास्तविकता का बोध अगर नहीं होगा और हमने व्यवहार अपना बदल लिया है तो धोखा ही होगा, उसमें तो अपने को तो धोखा होगा, दूसरे को भी धोखा होगा, अपना तो मोक्ष मार्ग बनेंगे और दूसरे का बनता होगा तो बिगड़ेगा। इसलिए कहते कि पहले वास्तविकता का बोध मुझे बहुत बहुत मुश्किल से मालूम पड़ती है। कल हम लोग शाम को चर्चा कर रहे थे कि देखो तो कितने लोग होंगे, और सबकी बात छोड़ो, ज्ञानियों में कितने होंगे जिनको अगर पूछा जाए कि हमारा मौलिक स्वरूप क्या है तो कौन नहीं मालूम, बोले तुम व्रत नियम संयम काहे कर रहे हो ये बता दो, तो हम नहीं बता पाएंगे कि इसलिए कर रहे हैं कि जीव जुदा उद्गल जुदा, ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों एक में हो गए हमारी अपनी भूल से अज्ञानता से, सो उनको अलग अलग करने के लाने हैं जो सब कर रहे प्रपंच, और कुछ हमारा उद्देश्य नहीं। कैसे कभी हमने अपने भीतर झांक के देखा, कितने लोग हैं जिनको ये सबसे पहले ये आएगा विचार कि नहीं ये जीव अलग है और देह अलग है, ये दोनों अलग है, इसलिए मैं सारा ये उन दोनों की अलग अलग महसूस करने के लिए सारी प्रक्रिया करना नहीं मालूम, ये अपनी मौलिकता नहीं मालूम हमको, जीव और उद्गल का स्वरूप नहीं मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको स्वरूप मालूम है उसको हो ही जावे सब कुछ, लेकिन मालूम तो होना चाहिए, जो श्रद्धालु है उसको वास्तविकता का बोध तो होना चाहिए, वास्तविकता का तो बोध नहीं है और बाकी सारी चीजें हम करते रहते हैं। तो फिर उन चीजों के पीछे जो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, स्वार्थ छिपा होता है, वो प्रकट होने लगता है, बाबा दिन थोड़ी छिपता है, तो दूसरा भी जो है मुश्किल में पड़ता है। हमें ऐसा दोहरा मापदंड बना करके नहीं चलना चाहिए, बहुत स्पष्ट हमारा विजन जो है एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं ये सब चीजें जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, मैं महाराज जी के पास बैठा हूं, मैं उनके उपदेश सुन रहा हूं, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, उसी क्षण के मन में आता है कि कहे के लिए आया हूं, अपने साथ में स्वरूप की प्राप्ति के लिए आया हूं, इस शरीर की सेवा पहल में जिंदगी निकल गई जबकि ये मेरा कभी नहीं हुआ, क्या ऐसा ख्याल आता है पूजा के क्षण में, ऐसा ख्याल आता है कि हम भी यहां से और बैठे रहूं घंटे भर, नहीं तो बाहर जाके इसी की सेवा करना पड़ेगी और ये मेरा नहीं है फिर भी मुझे इसकी सेवा करनी पड़ेगी, बाहर जैसे निकलूंगा सारे पांचों इंद्रियों के विषय मेरे सामने होंगे और मैं उसमें उलझ जाऊंगा, ये पवित्र भगवान है जिनके सामने मैं अपने शरीर को भूलाऊंगा और अपनी आत्मा का ख्याल
में लिए था पैक वैक करके कांच का, जरा सा धक्का लगा और नीचे गिरा, नीचे गिरा तो सारा सामान पैक। क्या मुझसे ज्यादा मूर्ख आदमी तुमने पहले नहीं देखा? उसको पता, लोग बड़े आश्चर्य में कि ये कैसा आदमी है, इसका सामान टूट गया और रोता नहीं है और उल्टा हम लोगों से कह रहा है, हम लोग तो सिंपैथी बताने आए हैं, सहानुभूति के लिए आए हैं कि देखो तुम्हारा इतना सारा कांच का सामान टूट गया, कितना महंगा लाए होगे, और ये बड़े मजे से जो हंस भी रहा है कांच का सामान टूटने के बाद भी, और कह रहा है उसके बावजूद कि आर यू नॉट सी एनी फूल बिफोर मी, मेरे पहले तुमने का कोई मूर्ख नहीं देखा कि अपना कांच का सामान गिरा के हक्का बक्का खड़ा हुआ है, नहीं देखा होगा। तो लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए कह रहा हूं कि ये तो कांच का सामान था और मुझे मालूम था कि जिस दिन भी धक्का लगा उसी दिन टूट के गिर जाएगा, इसमें रोने की क्या बात है। वो घर जाकर के पहुंचा था तब लोगों ने कहा कि ये टूटा फूटा सामान क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? उसने कहा कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ इतना हुआ कि समझ में आ गया आज कि ये टूट जाने वाला है, और मैं रोना चाहूं तो रो सकता हूं और मैं नहीं रोना चाहूं तो मैं नहीं रो सकता हूं। ऐसे ही किसी दिन ये कांच का सामान टूट के गिर जाएगा, अब समझ में आ गया कि अब रोने होने वाली बात नहीं, मैं फिर भी नहीं टूटूंगा, मैं फिर भी जिंदा रहूंगा, इसके टूट जाने से मैं नहीं टूटता। ये बोध हो गया उसको वास्तविकता, छोटा सा कांच का ग्लास गिरने से, हमारे तो यहां पर कांच का ग्लास रोज गिरता है, और रोज हम जो है चार, जिसके हाथ से गिरा होगा उससे चार बातें करने का मन होगा, और अपने हाथ से गिरा होगा तो भीतर ही भीतर अपना मुंह छिपाने का मन होगा कि कोई देख ना ले कि कांच का गिलास गिर गया। अरे कांच का गिलास गिर गया, वो तो टूटने वाला था, उस समय हम ठास से क्यों नहीं कर पाते हैं कि कांच का था, इसलिए नजाकत उसकी इसमें है कि वो टूटे और गिरे और फूट जाए। ऐसा अगर हमें वस्तु स्वरूप मालूम पड़ जाता है तो फिर हमारे व्यवहार में तब्दीली आए बिना नहीं रहती भैया, और अगर नहीं आई है या कि बाहर बाहर से आ गई है तो थोड़ी सी कोशिश करिएगा, थोड़ा सा भीतर झांक के देखिएगा कि हमें बोध हुआ है या नहीं हुआ है वास्तविकता का। यह हमारी दृष्टि की निर्मलता हमें वास्तविकता का बोध कराती है, या तो ऐसा कह लीजिए या जिसे वास्तविकता का बोध हो जाता है उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है। हमारे यहां दृष्टि की निर्मलता के मायने ये है कि जो चीज जैसी, जिस तत्व का जैसा स्वरूप, वैसा ही हमारे भीतर वो स्वरूप की प्रतीति होना शुरू हो गई, उस चीज को हम अनुभव करने लगे हैं। ये सम्यक दर्शन और दृष्टि की निर्मलता है। आज अपन पढ़ेंगे कि ऐसी दृष्टि की निर्मलता हो जाने के बाद क्या होता है, किन किन चीजों से हम अनायास बच जाते हैं, कोई चीज हमें मिल जाए तो और बाकी चीजें, हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो अनायास मिल जाती हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो छूट जाती हैं। ये श्लोक थोड़े से दूसरे पैटर्न के हैं, जैसे अपन पढ़ते आए हैं अभी नमः शिवर्धमानाय, ऐसे पढ़ते आए, ये थोड़े से दूसरे हैं। आर्या छंद है, इसको मैं पढ़ता हूं, आप इसको। सम्यग दर्शन शुद्धा, सम्यग दर्शन शुद्धा, नारद तिर्यग नपुंसक स्त्री त्वानी, तिर्यग नपुंसक स्त्री त्वानी, सम्यग दर्शन शुद्धा, दर्शन शुद्धा, नारद तिर्यग नपुंसक स्त्री त्वानी, दुष्कुल विक्रतालप आयु, दरिद्रतां च प्रजन्ति नाप्यवतिका, नहीं बनेगा फिर से पढ़ो। सम्यग दर्शन शुद्धा, नारद तिर्यग नपुंसक स्त्री त्वानी, नपुंसक स्त्री त्वानी, दुष्कुल विक्रतालप आयु, दरिद्रतां च प्रजन्ति नाप्यव्रतिका, च प्रजन्ति नाप्यव्रतिका, अभ्यास करना पड़ेगा तब बनेगा। अभी भगवान की वाणी को पढ़ने का भी अभ्यास नहीं,
बहुत सारी चीजें करना पड़ेंगी, करेंगे, अपन ने संकल्प कर लिया है तो करेंगे, पीछे नहीं रहना है। जब दुनिया की सब बातें सीख सकते हैं तो क्या ये नहीं सीख सकते हैं? मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जैनिज्म को थोड़ा मॉडिफाई करिए, थोड़ा सा इजी करिएगा, बहुत कठिन लगता है। तो मुझे तो देखा है मैंने कि इंजीनियरिंग की बुक कितनी आसान होती है, और केमिस्ट्री जब बड़ी स्कूल में पढ़ाई जाती है तो ऊपर से बाउंसर होती निकलती जाती, फिर भी चुपचाप चिमाने बैठे रहते के चुपचाप रहो, लेक्चर चल रहा 45 मिनट का, और घर जाकर के अच्छा खासा 10-10 दफे पढ़ करके तैयार होकर दूसरे दिन क्लास में आ जाते, वहां इतनी मेहनत कर लेते हैं उस पढ़ाई को पढ़ने की। और इसके लिए इसके उच्चारण का अभ्यास, जो वाणी भगवान हमारे कल्याण के लिए लिख के गए हैं, वो वाणी भी हमारे इस मुख के द्वारा उच्चारित नहीं होती, दिन भर में एक दफे भी उच्चारित नहीं होती, हमारा कैसा कर्म का उदय कहना चाहिए, या हमारा कितना कमजोर पुरुषार्थ है। खैर, कोशिश करिएगा, बनेगी, सबसे बनेगी। इसको तो मैं टेक्स्ट बुक मानता हूं कि ये पुस्तक जो है वो एक जगह अलमारी में सबके पास होनी चाहिए। एक श्लोक रोज पढ़ेंगे, नीचे उसका अर्थ लिखा हुआ है, वो अर्थ पढ़ लेंगे और रख देंगे। 150 दिन का काम है, और 150 दिन में पहले दिन एक श्लोक, दूसरे दिन दो, क्योंकि एक पुराने वाला और एक नया वाला। 150वें दिन मजा आएगा जब उन 149 श्लोक भी पढ़ेंगे और एक आखिरी वाला श्लोक पढ़ेंगे, तब फिर देखिएगा कैसा लगता है। टेक्स्ट बुक की तरह पढ़िएगा इसको। कभी अगर आपके जीवन में संकल्प लेने का मन हो तो ऐसा संकल्प लीजिए, रोज एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। हिंदी में अर्थ लिखा आप तो बहुत सुविधा है, और फिर अपने भीतर जितना आएगा समझ में उतना समझते चले जाएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं, इतने बुद्धू तो नहीं है कि अपन को बिल्कुल समझ में नहीं आए, क्यों भाई, इतने तो बुद्धू नहीं मेरे ख्याल से, आएगा समझ में। पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या है, कि क्या क्या चीज है। सम्यक दर्शन शुद्धा, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, जिनकी दृष्टि निर्मल हो गई, ऐसे जीव, और अव्रतिका ना अपि व्रतिका, जो अव्रति हैं व्रत से रहित होने पर भी, अकेला सम्यक दर्शन हुआ है, कोई व्रत नियम नहीं दिया, इवन रात्रि भोजन का त्याग है, तो कहते खाते नहीं है मगर हमारा नियम नहीं है, ऐसी स्थिति है इसके बावजूद भी, लेकिन सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है उसकी बात कर रहे हैं। और फिर जिसने व्रत नियम ले लिया उसकी तो बात ही छोड़ो, ये तो बहुत बहुत ऊंची बात है, हम मुक्ति नहीं कर पाएंगे, अभी तो हम सिर्फ सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, व्रत नियम वाले की तो बात ही छोड़ो, वो बहुत ऊंची चीज। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है और व्रत से रहित होने पर भी नारक तिरियक नपुंसक स्त्रीत्वानि, नरक में उत्पन्न नहीं होगा सम्यक दर्शन के साथ, न तिरंच में जाएगा, न नपुंसक होएगा, न स्त्री पने को प्राप्त होएगा। इतना बड़ा डिक्लेरेशन है सम्यक दर्शन के साथ, अगर सम्यक दर्शन होगा तो ये चीजें नहीं प्राप्त होंगी। और कह रहे हैं दुष्कुल विकृतल्प आयुर दरिद्रताम चा, और ना ही नीच कुल मिलेगा। कुल कौन सा होता है? ऊंचा, जिसमें अपन पैदा हुए वो ऊंचा, जिसमें दूसरा पैदा हुआ वो नीचा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। उच्च कुल नीच कुल सब अपने कुल को ऊंचा मानते हैं, लेकिन परिभाषा बना दी, जहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परंपरा से चला आ रहा है जिस कुल में वो कुल ऊंचा, जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात ही नहीं है, ऐसा है। और दूसरी परिभाषा बनाई, जहां पर ऊंचा आचरण है वो उच्च, और जहां पर आचरण नीचा है, उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर आचरण नीचा है तो देर नहीं लगेगी नीचे आने में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कुल परंपरा से मिला हुआ था, लेकिन आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, अपने आचरण को पवित्र नहीं बनाया, तो आपका कुल भी नीचा हो जाए। ये कह रहे हैं नीच कुल सम्यक दृष्टि को नहीं मिलता है, और विकलांग नहीं होगा सम्यक दृष्टि, अल्प आयु वाला नहीं होगा कि एक अंतर्मुहूर्त की आयु लेकर के आया है, या पर्याप्त अवस्था में ही समाप्त हो जाए सम्यक दर्शन के साथ। दरिद्रता दरिद्री नहीं होगा, इसका मतलब यह मत लेना कि जितने धनवान है वे सब सम्यक दृष्टि हैं और जो विकलांग नहीं है वे भी सम्यक दृष्टि है, ऐसा अर्थ मत ले देना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अब इसको जरा सा अपन डिटेल में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। कहते नरक में उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर प्रश्न उठता है कि शायद सम्यक दृष्टि थे और नरक में तो गए, सैनिक अभी भी हैं। तो कहते हैं जिसने पहले, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जिसने आयु नहीं बांधी, जिसने पहले आयु बांध ली नरक की,
उसको बाद में सम्यक दर्शन हो गए, और शायद सम्यक दर्शन हो जावे तो पहले नरक से नीचे नहीं जाएगा, और नरक में तो नपुंसक वेद रहता है, इसलिए नपुंसक में भी चला जाएगा। जो हमने नियम बनाया है कि नपुंसक में नहीं जाएगा, वो हमारा जिसने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब उसको नपुंसक वेद में नहीं जाएगा, पर जिसने पहले से आयु बंद कर ली है वो तो उसका तो कोई पतिहान नहीं, वो तो जा भी सकता है, जाएगा ही। और मनुष्य तिरंच आयु बांध ली हो फिर सम्यक दर्शन हुआ तो ठीक है, कर्म भूमि का नहीं बनाएंगे, भोग भूमि का बना देंगे, इतना आपको उसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपने पहले मनुष्य आयु और तिरंच आयु बांध ली है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जिसने नरक आयु तिरंच आयु और मनुष्य आयु में से कोई भी आयु बांध ली है देवायु को छोड़ करके, सम्यक दर्शन तो हो सकता है पर देशव्रति नहीं हो सकता, न महाव्रति हो सकता है। महाव्रत और देशव्रत लेने का मन तक नहीं होगा अगर जिसने तीन आयु कोई भी बांध ली है, नरक आयु, मनुष्य आयु और तिरंच आयु, सिर्फ देव आयु बांधी है, तब उसके लिए तो व्रत नियम संयम हो सकता है, बाकी के लिए नहीं हो सकता। अपने भाव टटोल करके देखना कि अगर हमको व्रत नियम संयम से घृणा होती है, व्रति और संयमी को देख करके घृणा होती है और स्वयं व्रत लेने की इच्छा नहीं होती, तो या तो नरक आयु बांध ली है कि बांधने का उपाय है, तैयारी है। सम्यक दर्शन होने पर कह रहे हैं कि बिना व्रत नियम संयम के तो रहेगा नहीं, और सम्यक दृष्टि है और व्रत से रहे थे तब भी अगर आयु बांधेगा तो ये आयु नहीं बांधेगा, ये डिक्लेरेशन है बहुत बड़ा कि इन चीजों में उत्पन्न नहीं होगा। अगर हाँ आयु बांध ली हो फिर बाद में सम्यक दर्शन किया हो तो भाई फिर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन तो हो सकता कि साथ में नरक की बांधी थी तो पहले में आ जाओ, लेकिन आयु बंधने के बाद तो जाना पड़ेगा। मनुष्य तिरंच की आयु बांध ली है अगर आपने तो भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न होंगे सम्यक दर्शन के बाद, क्योंकि वहां पर तो दो ही वेद हैं, स्त्री और पुरुष, वहां नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होने वाला। इस तरह जो है, और स्त्रीपना भी प्राप्त नहीं होता। कर्म भूमि के मनुष्य की बात है कि अगर कोई देव और नरक से सम्यक दर्शन के साथ में आवे तो यहां पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा, और उसमें जो है पुरुष ही होएगा, स्त्री पने को प्राप्त नहीं करेगा। आज पंचम काल में कोई मनुष्य से मनुष्य होता है तो मिथ्यात्व के साथ होता है, यही वजह तो है कि आचार्य महाराज कहते हैं कि भैया जन्म जयंती मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां तो जन्म सबका मिथ्यात्व के साथ ही होता है। अगर मनानी है तो जिस दिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो गए जिस दिन, उस दिन की जयंती मनाओ तो फिर भी ठीक है, उस दिन को आप सेलिब्रेट करो तो ठीक है, जन्म को क्या सेलिब्रेट, वो तो यहां जिसका जन्म होता मिथ्यात्व के साथ ही, कोई सम्यक दर्शन लेकर के उत्पन्न नहीं होगा इस पंचम काल में, मनुष्य से मनुष्यत्व कर उत्पन्न होता है। इसलिए ये सारी चीजें समझनी चाहिए और अपने जीवन को एक दिशा देनी चाहिए कि हमें क्या करना है। और भी बहुत सारी इसमें चीजें डिटेल में मैं आपसे क्या विशेष और कहूं। एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब इतनी महिमा अकेले सम्यक दर्शन की है, व्रत से रहित सम्यक दर्शन की, इसमें टीका में यही लिखा गया कि जब व्रतों से रहित सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है, तब कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन के साथ व्रत नियम संयम ले लावे तो उसकी क्या महिमा है, वो तो अपरंपार है, कहीं भी नहीं जा सकती है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा हमारा आचरण हमें अच्छा प्राप्त हो। एक बहुत छोटी सी घटना आपको वर्णी जी की सुनाते हैं कि उनकी श्रद्धा कैसी थी। थे तो जैनी नहीं, लेकिन श्रद्धा कैसी होती है और श्रद्धा के साथ आचरण की कितनी पवित्रता होती है। वो शिखर जी की वंदना करने गए थे, और शिखर जी की जो परिक्रमा दी जाती ना 36 किलोमीटर वाली है, मेरे को ठीक ठीक ख्याल हो तो 36 किलोमीटर वो नीमिया घाट से और पूरी वंदना करी जाती है। तो वो वंदना कर रहे थे और उन्होंने लिखा अपनी जीवन गाथा में कि वंदना इतनी कठिन हो गई, प्यास इतनी लगाई, पास में पानी तो था नहीं, और 2-1 किलोमीटर और रह गया था पर अब चला नहीं जाता था, प्राण जो है कंठगत थे, अब निकले कब निकले, अब क्या करें। तो एक क्षण के लिए आया कि अरे हम तो तीर्थ राज पर हैं और यहां मरण भी हो जाएगा तो हमारा तो कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं, दूसरी बात लेकिन एक है कि लोग क्या कहेंगे। लोग ये सोचेंगे कि वंदना करवे गए थे और मर गए। तो मन ही मन जो है कहते हैं भगवान पारसनाथ को आवाज दी कि भगवान देखो, एक तो हम जैनी आए नहीं, जैन कुल में पैदा नहीं भाई, जा आपको सब मालूम, और अब अगर पानी नहीं मिलो वो वंदना करवे आए थे तुम्हारी, और अगर मर गए तो चार आदमी का कहें तुम्हारे प्रति श्रद्धा रहे कि नहीं रहे उनकी, जा सोच लो। तुम भगवान से कह रहे थे कि चार लोगों की श्रद्धा तुम्हें कमती हो जाए हमारे मरे से, हमारी तो ठीक है आप में श्रद्धा है सो हम मर करके भी जो है अपना कल्याण कर लेंगे, और अगर आप में श्रद्धा कम होती हो तो पानी वानी यहां पर दिख जावे, प्यास बुझ जावे तो हमारा जीवन शेष रह जाए। ऐसा मन में विचार आया और कहते हैं कि 10-20 कदम आगे चले और जैसे किसी ने एक पानी का गड्ढा और शुद्ध साफ पानी का गड्ढा ही जैसे पहले से खोद के रखा हो वहां पर पानी पिया, और पानी पी करके आगे बढ़े और जो लोग थे उनने कहा कि वर्णी जी प्यास तो बहुत लगी। अरे भैया वो पानी को तो भाई पी के आए हम पीछे, कहले हमें तो नहीं मिलो, हम भी तो इसे आए, कहले देखो जाके जाके देखो सो देखो चूने हाथ। जिसकी श्रद्धा है उसके लिए सब है, और जिसकी श्रद्धा जिसकी आंखें ही नहीं है भैया उसको क्या दिखाई पड़ेगा। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक बार हमारी दृष्टि निर्मल हो जाती है तो ये संसार की चीजें तो बहुत छोटी मोटी हैं, हमें तो परमार्थ सज जाता है। ये जो हमने अभी आपसे कहा कि ये चीजें नहीं मिलेंगी और आगे कहेंगे कि ये चीजें मिलेंगी, इसको लालच नहीं समझना, ये तो फैक्ट्स हैं, ये तो वास्तविकता है, ये तो होगा ही यदि दृष्टि निर्मल हो जाएगी। ये कोई लालच नहीं दी जा रही है कि आपको इतना इतना मिलेगा इसलिए आपको सम्यक दर्शन और व्रत नियम संयम होने ही चाहिए, नहीं, ये हो जाने पर वास्तविकता है कि ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। हम अपने जीवन के उत्थान के लिए अपनी श्रद्धा को सच्चा बनाएं, ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि महाराज। एक चीज जो है वो मुझसे अभी कही गई थी, मैं ही बोल दूं कि आचार्य महाराज का ऐसा यहां पर भी संदेश था कि ये जो मांस निर्यात चल रहा है लगातार आज 50 साल हो गए हैं, और मांस निर्यात निरंतर चल रहा है देश में और फॉरेन करेंसी के लिए चल रहा है और कोई वजह नहीं है, तो क्या हम लोग एकजुट होकर के और संकल्प पत्र भर करके और अपनी संगठन प्रदर्शित करके और चाहे तो वहां इस चीज का इशारा कर सकते हैं कि भाई मांस निर्यात नहीं होना चाहिए। ये आदेश यहां के लोगों के लिए भी आचार्य महाराज का आया है। संकल्प पत्र अभी दिवा जी जो है मेरे पास ऊपर भी रख के गए हैं, वो कह गए हैं कि आज हम उसको शुरू कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। हम सब लोगों का आशीर्वाद उन चीजों में है, आचार्य जी ने जिस चीज के लिए आशीर्वाद दिया है हमारा तो आशीर्वाद उसी में ही समा गया सारा कुछ। तो आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को एक व्यवस्थित और एक निश्चित जैसा वहां से पैटर्न है उस पैटर्न पर करें और सब लोग एकजुट होकर के करें, ये भावना है। अब अपन गुरु शाश्वत सुख दर्शक जगन्नाथ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने निद्रा में सोता हो अथवा वग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते
पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में लुटाया करते वो शम शम की अविनश्वर मणिया हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
जान में खो Thank you.